9-8-66 का पहले क्लास रिकॉर्ड चला है। धीरे धीरे मनुआ धीरे धीरे ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप धैर्य देते हैं, कड़ुए बच्चों को धैर्य नहीं दे रहे हैं। कैसे बच्चों को धैर्य दे रहे हैं? मीठे मीठे रूहानी बच्चों को, जिस्मानी बच्चों को भी धैर्य नहीं दे रहे हैं, जो देह अभिमान में बने रहते हैं। जैसे लौकिक बाप भी धैर्य देता है ना, वो बीमार होता है तो उनको आहत देते हैं। अब तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन बदल कर सुख के दिन आ जाएंगे। वो हद का बाप हद का धैर्य देते हैं। अब ये तो है बेहद का बाप, बच्चों को धैर्य दे रहे हैं। बच्चे अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, बाकी ये थोड़े दिन बाकी है। अब तुमको बाप की याद में रहे, औरों को भी धैर्य धारण कराना है, औरों को भी सिखाओ, क्योंकि तुम भी शिव शक्तियां हो ना। शिव बाबा की शक्ति से ना अभी फिर से प्रकट हुई है। ये गोप भी आत्माएं हैं, ये गोप भी शिव से शक्ति ले रहे हैं, और तुम शक्तियां भी शक्ति ले रही हो। बाप ने समझाया है, इसमें कृपा या आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। जितना चाहे याद में रह करके शक्ति लेते जाओ, याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और याद से ही तुम शक्तिवान बन जाएंगे। शिव की शक्ति सेना इतनी सर्वशक्तिवान थी जो पुरानी दुनिया को नया बनाई दिया। मनुष्य तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। तुम जानते हो योग बल से इस पुरानी दुनिया को पलटाते हैं। अंगुली से भी मनुष्य ऐसा इशारा करते हैं कि अल्लाह को याद करो, ऊपर को इशारा करते हैं ना। इसका मतलब है कि कोई ऊपर नहीं बैठा हुआ है, ऊंची स्टेज में रहने वाला है, उसको याद करो। तुम बच्चे अब समझते हो बाप की याद से ये पत्थर का पहाड़ अर्थात पुरानी दुनिया बदल जाएगी। ये पुरानी दुनिया पत्थर का पहाड़ है, पत्थर बुद्धियों का पहाड़ है, इसको पलटना है, क्योंकि अब हम परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो और मेहनत करो, जो भी समय मिले उसमें बैठ करके सीखो, है बहुत सहज। बच्चों को तो हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है, हर एक के कर्मों का हिसाब किताब है। कन्याओं के तो कर्म अच्छे हैं।
क्या
सिर्फ कन्याओं के कर्म अच्छे हैं? भाइयों के कर्म खराब है क्या? माताओं के कर्म अच्छे नहीं क्या है? ये क्या बोल दिया? क्योंकि कन्याओं को संगम युग में बाप की तरफ से विशेष प्रेफरेंस मिलता है, भाइयों को उतना प्रेफरेंस नहीं मिलता है, माताओं को उतना प्रेफरेंस नहीं मिलता है, बांधेलियों को भी नहीं मिलता है। बांधेली याद बहुत करती है, लेकिन बाहरी रूप से देखा जाए तो बांधेली माताओं को कोई प्रेफरेंस नहीं मिलता। कन्याओं के लिए सब प्रकार की सुख सुविधाएं में मौजूद मुहैया रहती है, क्यों? ये पार्शलिटी क्यों है? क्योंकि एक तो कन्याओं में प्योरिटी की पावर होती है, दूसरे वो प्योरिटी की पावर का भी हिसाब किताब पूर्वजन्म से कनेक्टेड है। जरूर कन्याओं ने कोई पूर्वजन्म में ऐसे कर्म किए हैं जो बाप का सान्निध्य मिल जाता है। जो शादी की हुई माताएं हैं वो समझती हैं, इस समय अगर हम कन्या होती तो इन सब जंजीरों से छूटी हुई फ्री वर्ड होती, स्वतंत्र चिड़िया होती, क्योंकि कन्याएं फ्री वर्ड है, स्वतंत्र चिड़ियाएं हैं, जहां चाहे उड़ करके जा सकती हैं, उनको कोई भी प्रकार का बंधन नहीं है। क्यों? आज के घर परिवार में कन्याओं को बंधन नहीं होता क्या? माता पिता का, परिवार वालों का बंधन नहीं होता है क्या?
हैं? बहुत बढ़िया होती है।
बंधन तो होता है, लेकिन कानूनी तौर पर उनको सुरक्षा मिली हुई है। अगर बालिक कन्या है तो कि कोई भी बालिक कन्या जहां चाहे वहां जाकर रह सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता, तो बंधन है। मोह तो माताओं में होता है, फिर कन्या कहां है? मोह है इसका मतलब माता है,
कन्या भी
कहीं लगाव लग चुका है। जो लगाव लग चुका है तो कन्या नहीं है। तो बोला कन्या स्वतंत्र है, परंतु अगर खराब संग में नुकसान हो जाता है, कहीं लगाव लग जाता है तो बंधन में आ जाती है। तो देखो स्त्री पुरुष बच्चों आदि की कितनी जंजीरें हैं, इसमें रिवाज आदि का कितना बंधन रहता है। माताओं को रिवाज का बहुत बंधन रहता है, कन्याओं को इतना कोई बंधन नहीं है। तिरसम रिवाज का
शूटिंग,
चाहे शूटिंग हो चाहे ब्रॉड ड्रामा हो, दोनों में बात तो एक ही होती है। अब बॉम्बे भी कन्याएं तैयार हो रही है, अभी तैयार हुई नहीं है, हो रही है, लिखती है हम अहमदाबाद में जाएंगे। क्यों? बम्बई तो बड़ा शहर है, बड़े शहर की कन्याएं, बम्बई की कन्याएं, हर हर बम बम की नगरी की कन्याएं अहमदाबाद में क्यों जाएंगी? कहती है हमको मदद की कोई दरकार नहीं। कहाँ की कन्या है? बॉम्बे की कन्याएं कहती है हमको मदद की कोई दरकार नहीं, आप ही हम अपने गुजराती को गुजराती ही संभाल लेंगे, अपने प्रांत के लिए सब देखो कितनी मेहनत करते हैं, और तुम तो अपना स्वराज्य लेते हो, तुम्हारा स्वराज्य तो सारी पृथ्वी पर है, कोई एक राज्य की बात नहीं है, गुजराती यूपी आदि सबको स्वराज्य लेना है। मैं यूपी का हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं तेलुगु देशम हूँ, ये सब नहीं रहना चाहिए। हिंदी की हूँ ये तो फखर की बात है। क्यों? क्योंकि भगवान बाप हमारा बाप बना है। कौन सी भाषा में बोलते हैं? हिंदी भाषा में बोलते हैं। तो जो बाप की भाषा, जो माँ बाप की भाषा, वो बच्चों की भाषा हो जाती है, उसको मातृभाषा कहा जाता है, माता पिता की भाषा। تو یہ تو فخر کی بات ہے. باقی اور دوسری دوسری بھاشاؤں کا فخر رہے وہ ٹھیک بات نہیں. ایشیا کوئی بھی نہیں رہنی چاہیے. کیا دوسری دوسری بھاشا والوں کو
باپ کا پنے کا دوسرے پر ہائی کا
بولا کوئی بھی بھاشا سے ایشیا نہیں ہونی چاہیے. کیوں ایشیا نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ انگریزی تو ساری دنیا میں بولی جانے والی بھاشا ہے. کوئی کی انگریزی بھاشا ہے تو یہ بھی اس کو لفٹ ملی ہوئی ہے. وشو کی بھاشا ہے. ہمارا باپ بھی وشو کلیانکاری بن کر کے آیا ہوا ہے. ہم بچے بھی وشو کلیانکاری ہیں. باقی کسی ایک دیش میں بنی ہوئی بھاشا کے آدھار پر ایشیا دیش رکھنا یہ اچھی بات نہیں. کوئی کا اوگن دیش بچوں کا ماسا خراب نہیں ہونا چاہیے. کہ کوئی انگریزی بھاشا جانتا ہے لیکن اوگن والا ہے, ہندی بھاشا جانتا ہے لیکن کوئی اوگن ہے تو ماسا خراب ہو جائے. نہیں, اپن کو دیکھنا چاہیے ہم نے کتنی آتماؤں کو, بہنوں کو, بھائیوں کو سکھ کا راستہ بتایا, چاہے وہ گجراتی ہوں, چاہے ہندی بھاشا بھاشی ہوں, چاہے مراٹھی ہوں, چاہے کنڑ ہوں, ہیں تو سب آتمائیں. آتما کوئی ایک دیش سے بندھی ہوئی نہیں ہوتی ہے. آتما تو پتہ نہیں کہاں کی کہاں جا کر جنم لے لیتی ہے. شریر کا حساب کتاب ہوتا ہے دیش سے. شریر کا حساب کتاب تو ایک جنم کا ہے. آتما کوئی گجراتی یا فلانا یا تیلگو یا بنگالی نہیں ہوتی. آتما پرماتما باپ کی سنتان ہے, پرم پتا کی سنتان ہے. تو ہر بات میں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے دوسروں کو سکھ کا راستہ کتنا بتایا. اگر راستہ نہیں بتایا ہے تو کوئی کام کا نہیں. چاہے وشو میں پھیلی ہوئی انگریزی بھاشا کا ہی جاننے والا ہو, چاہے باپ کی بولی جانے والی ہندی بھاشا کا ہی بھاشی کیوں نہ ہو, لیکن اگر دوسروں کو سکھ کا راستہ نہیں بتاتا ہے تو کام کی بات نہیں. وہ باپ کے دل پر چڑھ نہیں سکتا. کون, کوئی کتنی بھی بھاشائیں جانتا ہو, کتنا بھی ہوشیار ہو, ہندی جانتا ہو, انگریزی جانتا ہو, دوسری بھاشائیں بھی جانتا ہو, بڑا بھی جوان ہو, لیکن اگر دوسروں کو سکھ کا راستہ نہیں بتاتا ہے تو باپ کے دل پر نہیں چڑھ سکتا. باپ دادا کی دل پر نہ چڑھا تو وہ تخت پر نہیں بیٹھے گا. منا جنم جنمانتر جو راجائیں ہوئے ہیں ان راجاؤں کی یہ خاصیت رہی ہوگی سنگم یگ میں کہ انہوں نے دوسروں کو سکھ کا راستہ ضرور بتایا ہوگا. بابا نے بتایا ہے لکشمن کرو چھیتر والا بچہ کتنا اچھا ہے, بہت سروس کا شوق ہے, ذرا بھی دیہبان نہیں ہے. کوئی کوئی کو تو بڑا دیہ اہنکار رہتا ہے. سمجھتے ہیں ہم نے اپنے پر کرپا نہیں کی, باپ کے اوپر کرپا کی. ایشوری سیوا تو کرتے ہیں لیکن اپنا اہنکار آ جاتا ہے. اہنکار میں آ کر کے سمجھتے ہیں ہم نے بابا کی بہت سروس کی لیکن بابا نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. باپ کہتے ہیں تم کبھی بھی کسی کے اوگن مت دیکھو, ایک دو سے ہمیشہ گن ہی اٹھانا ہے, دیکھنا ہے یہ کتنی اچھی سروس کرتے ہیں. کوئی کا بھاؤ سوبھاؤ نہیں دیکھنا ہے, کوئی کے اوگن نہیں دیکھنا ہے, क्या देखना है, ये सेवा कितनी करते हैं, इसकी डिसर्विस का गाय नहीं करना चाहिए क्या? कोई सेवा के बदले अगर डिसर्विस करना शुरू कर दे और हम दूसरों को सुनाना शुरू कर दें इसने ऐसी डिसर्विस की, ये भी ठीक बात नहीं है। फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा करते हैं। आजकल ऐसे भी हैं जो एक दूसरे की डिसर्विस का गायन करते रहते हैं। खुद सर्विस करें या न करें लेकिन दूसरों की डिसर्विस को जरूर बतावेंगे। अरे तुम अपनी सर्विस करो, दूसरों की सेवा करो, ब्राह्मण बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का काम है ज्ञान सुनना और दूसरों को सुनाना, सेवा करना और दूसरों को सेवा योग्य बनाना। बाप बेटा है, बाप के पास सबके समाचार आ जाते हैं, कौन सर्विस करता है, कौन डिससर्विस करता है, किसमें कौन सा अवगुण है, ये बाप को देखना है। हमारा काम है हमारी सर्विस का स्टाफ कितना है और दूसरे कितनी सर्विस करते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको हम फॉलो करें। सर्विसेबल बच्चों को बाप याद करता है, दुनिया बाप को याद करती है और बाप सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं, तो कितने श्रेष्ठ बच्चे हुए, जरूर उच्च पद पाएंगे। हर एक अवस्था को बाप जानते हैं, उनकी सर्विस को देख करके बाप महिमा भी करते हैं। देखो अचल बच्ची पटना में गई है, कितनी अच्छी सर्विस कर रही है। कौन सी बच्ची बताई? अचल बच्ची। कहाँ गई है? पटना में, जहाँ किसी की एक दूसरे से पटती ही नहीं, सब एक दूसरे के संस्कारों के विरोधी। वहां जाकर के बच्ची सर्विस कर रही है, सेंटर को जाकर के जगाया है, बाबा देखो महिमा करते हैं। तो किसी के अवगुण न देखना और किसी की सर्विस को देखना, यही बहुत बड़ा गुण है। बाबा महिमा करते हैं, बच्चों को सर्विस का जोश आना चाहिए। हर एक बच्चे को अपना कल्याण करना है, इस रूहानी सेवा से ही अपना कल्याण होगा। दूसरी आत्माओं का तो कल्याण होता ही है लेकिन पहले अपना कल्याण होता है। वो धंधा आदि वो तो जन्म जन्मांतर करते आए, ये धंधा तो कोई बिरला व्यापारी है जो करेगा। बाबा तो बच्चों को बहुत तरीका समझाते रहते कि ऐसे ऐसे सर्विस करनी चाहिए, तब दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करना ये डिससर्विस है, ऐसे बहुत करते हैं। बाबा को लिखते हैं जैसे कि बाबा जानते ही नहीं है। दूसरों की निंदा बाबा के पास लिख करके भेज देते हैं जैसे बाबा को पता ही नहीं है। अरे ये तो तुम्हारे अंदर माया आ गई, अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया नाक से पकड़ेगी। दूसरों के अवगुणों को नाक से सूंघते रहते हैं, बाप को याद नहीं किया तो माया जरूर पकड़ेगी। कैसे पकड़ेगी? कान से उतना नहीं पकड़ती है, नाक से पकड़ती है। नाक क्यों बताया? जैसे कुत्ता होता है ना, उसमें सूंघने का गुण बहुत ज्यादा होता है, तो दूसरों की सूंघ आसांगी जो ज्यादा करते हैं उनको माया नाक से पकड़ती है। बाप भी कहते हैं मुझे साधारण तन में आए हुए को देख करके बच्चे समझ नहीं सकते, ऐसे मूर्ख बच्चे हैं, समझते फलाना ये करता है, तो बाबा को बताते हैं। बाबा रोकते नहीं है क्या? बताने वालों को रोकते नहीं है कि तुम मत बताओ?
बता
क्या पता, बताने वाला किस देह से बता रहा है? दोनों बातें हो सकती हैं, कल्याण के भाव से बता रहा हूं, समझाते नहीं है। एक दूसरे को समझाना चाहिए ना, सीधे सीधे बाबा से शिकायत करने की बजाय पहले क्या करना चाहिए है?
एक दूसरे को समझाना,
आपस में एक दूसरे को प्यार से समझाना चाहिए। बाबा तो पहले से ही सबको समझते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बाबा को भी राय देते रहते हैं, बाबा ऐसे ऐसे करना चाहिए। ये नहीं समझते हैं कि बाबा थोड़ा भी ऐसा करेंगे तो ट्रेटर बन पड़ेंगे, बाबा को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं, अपनी अकल बाबा के पास लिख करके भेजते हैं। 9-8-6 की वाणी का दूसरा पिन पाका है ना, चूहे लड़ी हल्ली गरी, चूहे को हल्ली की गांठ मिल गई तो पंसारी बन करके बैठ गया, कहता है मैं भी पंसारी हूं, थोड़ी सी सर्विस करते हैं तो बहुत देह अहंकार चढ़ जाता है, उनका माथा ही फिर जाता है। ये नहीं समझते हम ये डिसर्विस करते हैं, भूले तो बहुत से बच्चों से होती रहती है, कब अवस्था ऊंची चढ़ती है कब नीचे चली जाती है ये चलता ही आता है, तो हरेक को अपनी अवस्था देखनी चाहिए। ईमानदार जो बच्चे हैं वो झट अपनी अवस्था को बताते हैं, कोई तो अपनी भूलों को छुपाए लेते हैं, बाप को बताते ही नहीं, इसमें तो बड़ा निरहंकारी पना चाहिए। किसमें? बाप को पोता में लेने में बहुत निरहंकारी पना चाहिए, बच्चों को सर्विस बढ़ाने में लग जाना चाहिए, हमेशा ये ख्याल रहना चाहिए कि जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख करके और करेंगे। मैं किसकी निंदा करूंगा तो और भी मुझे देख करके दूसरों की निंदा करने लग पड़ेंगे। बहुत से बच्चों को इस बात का ख्याल आता ही नहीं है, बाप समझाते हैं तुम अपनी सर्विस में लग जाओ, दूसरों की डिसर्विस का बखान मत करो, नहीं तो बहुत पछतावेंगे, दुश्मन भी बहुत बन जाते हैं। बाप खुद कहते हैं ये आसुरी संप्रदाय है, ये आसुरी संप्रदाय कौन कह सकता है, जरूर भगवान ही कह सकते हैं। बच्चों को दूसरों को आसुरी संप्रदाय कहने का हक नहीं है, बाप कहते ये है आसुरी संप्रदाय, वो है दैवी संप्रदाय, और कोई ऐसे नहीं कह सकता। बाप कहते हैं ये आसुरी विकारी संप्रदाय है, तुम अब सूत संप्रदाय से ट्रांसफर होकर के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बन गए हो, ब्रह्मा मुख से जो बातें निकलती हैं उन बातों को तुम फॉलो करने वाले बन गए हो, जिनमें 5 विकार हैं, वो आसुरी संप्रदाय। छठा विकार
मोह।
छठा विकार है आलस्य, सुस्ती, नींद, ये विकार भी जिनमें है वो भी आसुरी संप्रदाय है। तुम बच्चे दैवी संप्रदाय हो, तुम देवता बनने के लिए पांच विकारों पर जीत पहन रहे हो। अब कोई देवताएं तो यहां है नहीं, देवताएं तो सतयुग में होंगे। अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। भगवान वाच कहते हैं परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो इन बातों को समझ नहीं सकते कि भगवान कौन है। भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं, शिव का मंदिर भी है, मंदिर बना हुआ है, फिर सर्वव्यापी क्यों कह देते? मंदिर बना घर, भगवान का घर बनाया हुआ है तो भगवान अपने घर में होगा ना, सर्वव्यापी कैसे हो गया? शिव परमात्मा नम है कि भी कहते हैं, नमन भी करते हैं, तो शिव को नमन करते हैं ना, बुलाते भी है, हे पति तो पावन आओ, तो बुलाया कोई सर्वव्यापी को जाता है क्या? तो सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी मूर्खता है। तुम बच्चों को अब चांस मिलता है समझाने के लिए, क्या अब क्या चांस मिलता है, क्या समझाने के लिए चांस मिलता है कि बाप एक व्यापी होकर के आया हुआ है, सर्वव्यापी बाप नहीं है। प्रदर्शनी में भी समझाते रहो कि गीता का भगवान कौन है, तुमको चांस मिला हुआ है। वो झूठे ब्राह्मण तो गीता का भगवान कृष्ण की सोल दादा लेखराज को ही बताई देते, गीता का साकार भगवान दादा लेखराज ब्रह्मा को ही समझते हैं और दूसरों को भी बताते हैं कि गीता का साकार भगवान दुनिया में कोई हो नहीं सकता, एक ही था और एक ही रहेगा। बाप कहते हैं ये सब झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना झूठ बताना ये इनका धंधा है, तुम सच बताते हो। तो प्रदर्शनी में समझाते रहो कि गीता का भगवान कौन है। कौन सी प्रदर्शनी में? जड़ चित्रों की प्रदर्शनी में। उन्होंने तो जड़ चित्रों की प्रदर्शनी बनाई दी, उसमें गीता का भगवान दिखाया हुआ है कि दुनिया वाले कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण, और दूसरी तरफ चित्र दिखाया हुआ है निराकार शिव का। तो निराकार शिव जो है ज्योति बिंदु, वो गीता का गीत ज्ञान का गीत कैसे गावेगा? ज्योति बिंदु ज्ञान का गीत गावेगा क्या? नहीं। अरे गीता ज्ञान अमृत तो सब कहा जाता है जब मनन चिंतन मंथन करके नई बातें निकाली जाए, मक्खन निकाला जाए। वो मनन चिंतन मंथन का मक्खन कृष्ण नहीं निकाल सकता, क्योंकि कृष्ण को तो मुरलियों में बोला है कृष्ण बच्चा है, समझदार नहीं है, बच्चा बुद्धि है। कृष्ण बच्चे को जन्म देने वाला भी कोई होगा, तो दादा लेखराज अगर कृष्ण बच्चा है तो उसको यज्ञ के आदि में जन्म देने वाला भी कोई होगा, जिसने ये बताया कि तुम्हारे साक्षात्कारों का ये अर्थ है कि तुम कृष्ण के रूप में आने वाली दुनिया में जन्म लेने वाले हो, इस दुनिया में तुमको ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है। तो वो हुआ जन्मदाता बाप, यज्ञ के आदि का वो व्यक्तित्व जिसने ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का अर्थ क्लियर करके बताया, वही भागीदार बाप। यज्ञ के आदि में शरीर छोड़ने के बाद जब ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ देती है तो यज्ञ में आकर के दोबारा ऐड हो जाता है, वही बाप बीज रूप आत्मा। वो बीज को बीज रूप स्टेज धारण करने में कोई मेहनत नहीं लगती, जो है बीज रूप बीज बोने वाला है, सारी सृष्टि को जन्म देने वाला बीज है। बीज माना पिता, उसको अपने स्वरूप में टिकने में कोई मेहनत नहीं है, और आत्मा को मेहनत हो सकती है। जो जड़ों में बैठी हुई आत्माएं हैं, वो जड़ स्वरूप है, विस्तार वाली है। टहनियों और डालियों में बैठी हुई आत्माएं, वो और ही विस्तार वाली है। जो विस्तार में जिनका जाने का स्वभाव होता है, संस्कार होता है, वो खुद भी विस्तार में जाते हैं, दूसरों को भी विस्तार में ले जाते हैं। खुद भी सार में नहीं टिक पाते और दूसरों को भी सार में नहीं टिकने देते। सार है निराकार, जो निराकारी स्टेज में टिक जाता है। तो तुम बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना चाहिए, तुम्हारे लिए सहज है, जड़ चित्रों की प्रदर्शनी नहीं। कौन से चित्रों की प्रदर्शनी? चैतन्य चित्र की प्रदर्शनी में तुम्हें समझाना चाहिए। देखो निराकार, निराकारी स्टेज में टिकने वाला गीता का भगवान अभी इस सृष्टि पर कार्य कर रहा है। जो भी धर्म पिताए हुए हैं, वो साफ निराकारी स्टेज वाले थे। उन बापों का भी बाप, साफ धर्म पिताओं का भी बाप, वो तो कितनी निराकारी स्टेज वाला होगा। उस निराकारी स्टेज वाले बाप को प्रत्यक्ष करना निराकारी स्टेज वाले बच्चों का ही काम है। ऐसे बच्चे जिन्होंने श्रीमत को फॉलो किया है, श्रीमत बाप की श्रीमत है, कोई देहधारी को याद नहीं करना है। अगर कोई देहधारी को याद किया तो पतित बन पड़ेंगे। एक निराकार बाप को याद करना है। क्या ब्रह्मा को भी याद नहीं करना है? ब्रह्मा तो है ही बड़ी माँ, माँ तो होती ही धरणी है, धरणी तो साकार ही होती है। साकार धरणी में निराकार बीज बोया जाता है, तो धरणी को अगर याद करेंगे तो बुद्धि मिट्टी का रूप पकड़ेगी या निराकारी स्टेज पकड़ेगी? मिट्टी बनती रहेगी। बाप कहते हैं अभी ब्रह्मा को याद नहीं करना है, ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रखना है, चाहे बेसिक नॉलेज हो चाहे एडवांस नॉलेज हो, क्योंकि ये भूल बेसिक नॉलेज में भी देखी गई, अम्मई अम्मा अम्मई अम्मा, और एडवांस नॉलेज में भी ये भूल देखी जा रही है, अम्मई अम्मा अम्मई अम्मा।
माँ को बुलाना थोड़े याद करना होता है,
बुलाएंगे तो भी बुद्धि में चेहरा याद आएगा। ब्रह्मा कुमारियां अभी भी आह्वान कर रही है, आओ। किसको कहती है? ब्रह्मा बाबा को आह्वान कर रही है, आओ। अरे पतित पावन आओ या ब्रह्मा बाबा आओ, कौन सदगति करेगा? है हाँ, तो सदगति कौन करेगा? जो सदगति करने वाला है वो तो एक ही बाप है ना, बाकी जितने भी गुरु हैं वो सब देहधारी है, देह में आसक्ति रखने वाले हैं। खुद भी देह में आसक्ति रखते हैं, खुद भी नीचे जाते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी नीचे ले जाते हैं। देखा जा रहा है जिन्होंने ब्रह्मा के चोले को याद किया, उन्हें याद करने वालों का वही असर होता जा रहा है जो ब्रह्मा का हुआ। ब्रह्मा ने हार्ट फेल होकर के अचानक शरीर छोड़ा, अकाले मौत हुई, तो उसको फॉलो करने वालों का भी क्या असर हो रहा है? अचानक शरीर छोड़ रहे, अकाले मौत हो रही है, सूक्ष्म शरीर धारण कर रहे। तो जो सूक्ष्म शरीर धारण किया उसमें तो सूक्ष्म देह अभिमान रह गया, अपना शरीर भी नहीं है जिससे हम पुरुषार्थ कर सके। तो बाप कहते हैं कोई को याद नहीं करना, एक को याद करना है और एक से ही सदगति होनी है। जिस एक से सदगति होनी है वो है गीता का भगवान। ब्रह्मा के स्वरूप में निराकार शिव आता है ठीक है, रुद्रमाला के मणकों में भी आता है, मानना पड़ेगा, क्योंकि रुद्राक्ष के जो भी मणके हैं ان میں مخ بنے ہوئے ہیں, کوئی میں ایک مخ, کوئی میں چار مخ, کوئی میں چودہ مخ. وہ مخ ہے مخ لینے کی یادگار ہے. ان مخوں میں ایک مخ ہے سپریم سول کا بھی ہے, ضرور سپریم سول نے کبھی پرویش کیا ہے, لیکن کب پرویش کیا یہ کوئی کہہ نہیں سکتا. مقرر رتھ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر شیو کی پرویشتا ہے, اس کو کہنے کی درکار ہی نہیں پڑے گی. بھگوان کبھی اپنے کو نہیں کہتا ہے میں بھگوان ہوں. جو اپن کو بھگوان کہتے ہیں مرلی میں ان کو کیا کہتی لیا ہے, ہرنیا کشپ, ہرنیہ مانے سونا, کاش مانے تیز, پا مانا پینے والا. سونے جیسی سچی سچی آتمائیں جو ہیں اس دنیا میں, ان کے تیز کو پینے والا, ان آتماؤں میں جتنی بھی پیورٹی کی پاور ہے, ان پیورٹی کی پاور کو وہ بھری ہوئی تھالی کو سفا چٹ کر جاتے ہیں. کون ہرنیا کشپ, وہ سادھو سنیاسیوں کو بولا ہرنیا کشپ. ایسا ہرنیا کشپ بننے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے بھی دھرم پتا ہیں, چاہے وہ اسلام دھرم کے پتا ہوں, چاہے وہ بودھی دھرم کے پتا ہوں, چاہے سکھ دھرم کے پتا ہوں, وہ سات دیہداری دھرم گرو ہیں. برہما کماریوں کا پتا کون ہے؟ برہما کماریاں کس کو پتا مانتی ہیں؟ برہما کو پتا مانتی ہیں. تو وہ نراکاری ہوا یا ساکاری ہوا؟ وہ بھی آکاری ہے, ساکاری تھا. ساکاری کے چتر نکالے گئے, آکاری کا آواہن کرتے ہیں, لیکن دونوں باتوں سے کلیان نہیں ہو سکتا. باپ کہتے ہیں آپ صرف مجھے ایک کو یاد کریں گے تو تمہارے پاپ بچ ہوں گے. تو تم بچوں کو پردرشنی میں سمجھاتے رہنا, کیونکہ تم بچوں کو اب چانس ملا ہے. کیا یہ سمجھانے کا کہ نراکار کیا ہے اور ساکار کیا ہے. برہما جتنے بھی چتر نکلے ہیں, جتنے بھی فوٹو نکلے ہیں, ان میں ایک میں بھی نراکاری اسٹیج نہیں دکھائی پڑتی. جیسے دھرم پتاؤں کی نراکاری اسٹیج ہے, مہاتما بدھ کی, کرائسٹ کی, گرو نانک کی, وہ چہرے کو دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جیسے آتما اس ساکار سستی میں موجود نہیں ہے. نراکاری سستی کی آتما ہے, وہ نراکاری اسٹیج برہما کی نہیں دکھائی دیتی. ابھی وہ برہما کی سول سوکشم شریر سے دادی گلزار میں پرویش کر رہی ہے, سوکشم دیوان رہ گیا, رودرمالا کے مڑکوں میں پرویش کر رہی ہے. رودرمالا کے مڑکوں میں نمبر وار پرویش ہوتا ہے, بھلے جگدمبا میں بھی پرویش ہوتا ہے, کیونکہ تیسرا نیتر جگدمبا کو بھی دکھاتے ہیں. لیکن کب پرویش ہوتا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا. مہاکالی کو بھی تیسرا نیتر دکھاتے ہیں, لیکن کب وہ مہاکالی کا روپ دھارن کرتی ہے, مہاکالی کا روپ دھارن کیا ہے یا کرے گی یا کر رہی ہے, یہ کچھ بھی پتا نہیں. تو مقرر رتھ ہوا یا ٹیمپریری رتھ ہوا, کیا کہیں گے؟ برہما میں کون سا رتھ تھا؟ ٹیمپریری رتھ. جب برہما میں ہی ٹیمپریری رتھ ہے تو جگدمبا میں بھی کیا کہا جائے گا؟ ٹیمپریری رتھ ہے. مقرر رتھ تو ایک ہی ہے. اس مقرر رتھ کے بارے میں بھی مقرر رتھ سوئم نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر شیو بابا کی پرویشتا ہے. اگر کہتا ہے تو رنا کشپ ہے. کیا کیسی آتما ہے؟ جو سچی سچی سونے جیسا پارٹ بجانے والی آتمائیں ہیں, بھولی بھالی آتمائیں ہیں, ان بھولی بھالی آتماؤں کے پوترتا روپی تیز کو پینے والا ہے, ہب پکڑ جانے والا ہے. تو ستیاناشی ہوا یا کلیانکاری ہوا؟ پھر تو ستیاناشی ہو جائے. باپ کہتے ہیں میں تو وشو کلیانکاری بن کر کے آتا ہوں, جس تن میں آتا ہوں اس کو بھی ٹائٹل مل جاتا ہے. کون سا؟ ہر ہر مہادیو سمبھو काशी विश्वनाथ देंगे। विश्वनाथ का टाइटल ही नहीं मिलता है, प्रैक्टिकल में भी सारे विश्व का नाथ बन करके रहता है। तो अभी ये बात बताई कि प्रदर्शनी में समझाना है और दूसरों को भी सिखाना है कि गीता का भगवान कौन है, लिखाना चाहिए, समझाएकर उनसे लिखाए लेना चाहिए। आदमी को देख करके उसे लिखाए लेना चाहिए। बड़ा आदमी है, कोई बड़ा ब्रह्मा कुमार है तो उसे लिखाए लेना चाहिए, उसका ऑक्यूपेशन भी देखना चाहिए। सर्विसेबल है ये ऐसे ही है। प्रदर्शनी में हर एक की नब्ज देखी जाती है, नब्ज देखने से पता पड़ जाता है। प्रोजेक्टर में तो किसी को समझा ही नहीं सकेंगे क्या चित्र होता है ना, एक चित्र होता फिक्स और एक चित्र होता है चलता फिरता। जो चल चित्र होता है उसमें समझाया जा सकता है जास्ती। तो बोला प्रोजेक्टर में कोई को इतना नहीं समझा सकेंगे, सनमुख समझाने में बड़ा मजा आएगा। प्रदर्शनी बहुत अच्छी चीज है। कौन सी प्रदर्शनी? जड़ चित्रों की प्रदर्शनी नहीं, जो भक्ति मार्ग में दिखाते चले आए। हमारी है चैतन्य प्रदर्शनी। उस चैतन्य प्रदर्शनी से भी सीख सकते हैं। बाप खुद कहते हैं तुम आसुरी संप्रदाय हो। क्यों? क्योंकि माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बैठे बनाए। बाप ने जो चित्र बनवाए उन चित्रों को गुम कर दिया, और जो माया की मत पर चित्र बनाए गए उन चित्रों को संसार के सामने प्रत्यक्ष कर दिया। तो आसुरी संप्रदाय हुए या देवी संप्रदाय हुए, अब देखो ये बच्चे पावन बन रहे हैं। लेकिन रेगुलर पढ़ाई पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा क्या?
डायरेक्ट
रेगुलर जो पढ़ाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात नहीं बताई, उसके लिए तो बता दिया टैप रिकॉर्डर रखना चाहिए। जिनके पास पैसे हैं वो टैप रिकॉर्डर वीसीडी वगैरह खरीदे और दूसरों को भी दिखाए। वो गुड सेकंड क्लास माल है, थर्ड क्लास माल है मुरली पढ़ना और दूसरों को सुनाना। वो थर्ड क्लास माल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आजकल की दुनिया में रेल में भी थर्ड क्लास खत्म कर दिया। ये भी संकल्पों की ट्रेन है। जो संकल्पों की ट्रेन चलानी है तो मुरली पढ़ के दूसरों को सुनाना अथवा खुद पढ़ना, वो थर्ड क्लास माल नहीं लेना।
जो है वो क्या करेंगे?
क्या जो है वो थर्ड क्लास हो गया, उसको लेंगे क्यों? जो थर्ड क्लास होंगे वो थर्ड क्लास लेंगे, जो सेकंड क्लास होंगे वो सेकंड क्लास लेंगे, जो गुड सेकंड क्लास होंगे वो गुड सेकंड क्लास लेंगे।
ग्रुप के लिए तो थर्ड क्लास भी दिखाना ही पड़ता है।
किसको दिखाना पड़ता है?
प्रूफ के लिए, सर्विस
ग्रुप,
सर्विस में प्रूफ के लिए,
प्रूफ के लिए, प्रूफ के लिए वीसीडी है, डीवीडी है।
डीवीडी था आपका बाबा बोले थे,
अभी तो डीवीडी निकल पड़ा है, एकदम क्लियर आता है। तो बोला रेगुलर पढ़ाई पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा क्या? जो सातवें दिन पढ़ाई पढ़ लेते हैं संगठन क्लास में जाकर के, या महीने में एक बार संगठन क्लास कर लेते हैं, उनको वो निराकारी स्टेज का नारायणी नशा चढ़ने वाला नहीं है। पहले एक को चढ़ता है, फिर एक के बाद अनेक को चढ़ता है। दीपावली में जब दीपक जलाए जाते हैं तो पहले एक जमराज का दीपक जलाया जाता है, बड़ा दीपक, फिर बड़े दीपक से छोटे छोटे सारे दीपक जल जाते हैं। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए एक का ही काम है, ये तो दूसरों को डाउन करने वाली बात हो गई। रेगुलर पढ़ाई पढ़नी है। बांधेली हो तो भी घर बैठे बाप को याद करती रहो, रोज मुरली सुनती रहो। टैप रिकॉर्डर तो है ना,
भाषा नहीं समझ में आए चलेगा?
भाषा नहीं समझ में आती है, जो हिंदी जानने वाले हैं वो उनसे, उनको टीचर बना के बैठा लो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। घर में बैठे याद करना ये भी अच्छी बात है। किस के लिए? बांधेली माताओं के लिए। परंतु बाप को याद करना भी बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई। जो नॉन सर्विसेबल है, सर्विस में नहीं रहते हैं, बाप से किस जन्म का बर्तन मिलता है? क्या ब्रह्मा से उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कितने जन्म का बर्तन मिलेगा? है ज्यादा से ज्यादा 20 जन्म का बर्तन मिलेगा। माना कुमार का दादी या विश्व किशोर भाऊ जो शूटिंग पीरियड में ब्रह्मा बाबा का सबसे ज्यादा प्यार लेते रहे, जिम्मेवारी उठाते रहे, अभी भी जिम्मेवारी उठा रहे हैं, वो उनके सतीज में जाके बच्चे बनेंगे तो कितने जन्म लेंगे? 20 जन्म लेंगे। तो 21 जन्म का वर्षा उनको नहीं मिलता है। वो 20 जन्म लेने वाले द्वापर युग से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि सेकंड नारायण के बच्चे हैं। सेकंड नारायण उसमें सेकंड धर्म पिता प्रवेश करेगा। नंबर दो का नारायण उसमें नंबर दो का धर्म पिता प्रवेश करता है। नंबर वन है शिव बाबा, ऊंचे ऊंचे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला, वो ऊंचे ऊंचे नारायण में प्रवेश करता है। जो डायरेक्ट नरसिंह नारायण इसी जन्म में बनता है। तो 21 जन्म का वर्षा सिर्फ बाप से मिल सकता है। जिनसे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको याद नहीं करते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी बच्चे भी बहुत अच्छा भाषण कर लेते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। ना सवेरे उठ सकते हैं, भाषण पब्लिक में बहुत अच्छा करेंगे, लोग समझेंगे ये तो बहुत ज्ञानी तू आत्मा है। आगे बरगल आगे में उठते हैं, सवेरे उठते भी हैं, तो बैठने से उनको झुटका आने लगता है, प्यार ही नहीं है, पहचाना ही नहीं है, बिंदु को याद करते रहते हैं। अब बिंदु तो बाप नहीं है, बाप का तो नाम रूप देश काल सब कुछ है, और बाप तो इस आकार सृष्टि पर आया हुआ है, पतितों को पावन बना करके ले जाएगा, बीच में तो वापस नहीं जाएगा। याद करने का टाइम तो अमृत वेला ही अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ करके 8 बजे लग जाते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग वालों की तो उतरती कला है, और तुम्हारी तो चढ़ती कला है। यहां तो चढ़ने ही चढ़ने की बात है, उतरने की तो बात ही नहीं। यहां माना कहां? बाप के सन्मुख चढ़ने ही चढ़ने की बात है, और जो बाप से विमुख हो जाती है आत्मा तो माया पकड़ती है, माया कितने बिगड़ डालती है। सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी, विकल्प विनाश कैसे होंगे? बाकी सिर्फ मुरली चलाना, वो तो छोटी बच्ची को भी सिखाए दो हिंदी पढ़ना, वो भी मुरली पढ़ करके दूसरों को सुनाई देगी। छोटी बच्ची भी मुरली की बातें समझ करके दूसरों को समझा सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये पढ़ाई तो बड़ों के लिए है। कौन सी पढ़ाई?
ये पढ़ाई अभी जो पढ़ाई पढ़ा रहे,
एडवांस पढ़ाई, बेसिक नॉलेज में जो मुरली पढ़ करके सुनाते हैं समझाते हैं, वो तो छोटा बच्चा भी समझा सकता है, लेकिन एडवांस नॉलेज की जो पढ़ाई है वो ही समझा सकता है जो खुद मनन चिंतन करे और दूसरों को मनन चिंतन मंथन करना सिखाए, क्योंकि ये बड़ों के लिए पढ़ाई है, समझदार लोगों के लिए पढ़ाई है। तो देखो ये कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमको पढ़ाने वाला कौन है? ये बच्चों को नशा नहीं करता है
बाबा, अब बीच में रुकाएंगे तो ही रुक जाएगा।
पढ़ाने वाला कौन है? यही बात भूल जाते हैं। माया किसको धोखा देती है? हम अपने को ना देख दूसरों को देखने लग पड़ते हैं। हमको सर्विस में बच्चों को देखना चाहिए और अपनी सर्विस में हम लगे रहे। बाप के पास सब प्रकार के समाचार आते रहते हैं, ये भी होता है। औरों की निंदा करने में सारा टाइम वेस्ट कर देती है। तुम्हारा काम है सर्विस में रहना, दूसरों की न निंदा करना है और न निंदा कानों से सुनना। कोई बात है, इशारा बाप को दे दिया, पर चिंतन क्यों करना चाहिए? पर चिंतन में अपना टाइम वेस्ट क्यों करना? अक्षर ऐसे ऐसे लिखते हैं जो कोई नालायक बच्चा भी नहीं लिखे। पर चिंतन में, पर चिंतन जब करते हैं तो दूसरों के लिए निंदा ऐसी लिख ली करके बाप के पास भेजते हैं जो कोई नालायक भी ऐसी निंदा न लिखे। अज्ञान काल सपूत बच्चे भी ऐसे नहीं लिखते होंगे। जितने ज्ञान काल में रहने वाले ज्ञानी बच्चे अपन को कहलाने वाले, वो लिख लिख करके भेजते। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चे ऐसे लिखते हैं जो बात मत पूछो, क्योंकि सर्विस में पूरा ध्यान नहीं देते हैं। जिस सर्विस में बुद्धि लगी रहती है, सर्विस में तो बच्चों को रात दिन लगा रहना चाहिए। क्या रात में सोते रहे, सपने भी सर्विस के आवे, बाप की याद के सपने आवे, दूसरों की निंदा करने के सपने भी नहीं आने चाहिए। तुम्हारा धंधा ही है क्या? सेवा करना और दूसरों को सेवा लायक बनाना। रोज प्रदर्शनी पर बैठ करके एक दूसरे को समझाते रहो। कौन सी प्रदर्शनी? ये शिव बाबा है, ये प्रजापिता है। क्या रोज प्रदर्शनी लगती है तुम्हारी? ये क्या, ये तुम्हारी प्रदर्शनी रोज लगती है? चैतन्य है या जड़ चित्र की प्रदर्शनी है? बहुत से लोग बच्चे ऐसे हैं जो जड़ चित्र मांगते रहते हैं। बाबा का फोटो निकाले, बाबा कहते हैं बुद्धू बच्चे हैं। जब साकार में चैतन्य में मौजूद है तो फोटो क्यों निकालते हो? कोई मुर्दा हो जाता है तो उसका फोटो निकाला जाता है कि यादगार रख ले, यहाँ तो जीता जागता बैठा हुआ है। तो प्रदर्शनी पर बच्चों एक दूसरे को समझाते रहे, ये शिव बाबा है, ये प्रजापिता है। क्या मतलब हुआ है? कैसे समझाएंगे प्रदर्शनी पर? जब साकारी स्टेज होती है तो प्रजापिता है, और जब निराकारी स्टेज होती है तो शिव बाबा।
हम साथ में शिव बाबा ही बातें करते हैं।
नहीं, समझाने के लिए, अपने अंदर से तो समझना है, लेकिन दूसरों को समझाने के लिए बताना है कि अभी ये साकारी स्टेज है, ये प्रजापिता ब्रह्म है, अब ये निराकारी स्टेज है, देखो देखने में आ रही है। कोई भी समय, कोई जरूरी नहीं है। तो प्रदर्शनी पर बच्चों को समझाते रहना है, एक दो को बैठ करके प्रदर्शनी पर रोज समझाओ, ये शिव बाबा है और ये प्रजापिता है, प्रजापिता ब्रह्म है। क्या प्रजापिता भी हो सकता है और ब्रह्मा बाबा भी हो सकता है? कल पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। क्या कहाँ गाया हुआ है? कहाँ गाया हुआ है? शास्त्रों में क्या गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा के बारे में? अरे उसका चित्र कैसा दिखाया है शास्त्रों में? अरे प्रजापिता का चित्र दिखाया है, प्रजापति
है,
बकरे का, मैं माना बकरा हुआ। अगर देवान में आता है, देवान में आकर के बोलता है कि मैंने ये किया, तो वो प्रजापिता का काम है।
तो हर समय
निराकार
स्थिति में रहते हैं?
हर समय किसने कहा? हर समय दिखाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। यहाँ तो बता रहे हैं प्रदर्शनी में समझाओ, ये प्रजापिता है। जिस समय प्रजापिता है उस समय समझाओ ये प्रजापिता है।
समझ नहीं
है
वो बात।
ये बाप है, निराकार बाप है।
अभी कौन है?
शिव बाबा है। बोला कल पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है, शास्त्रों में गाया हुआ है, तो कहाँ का गायन है? बकरे की दाढ़ी लगाई दी, बकरे की दाढ़ी वाला प्रजापति को दिखाते हैं शास्त्र में। पहले नहीं थी बकरे की दाढ़ी। क्या शास्त्रों में दिखाया है पहले बकरा का मुख नहीं था, बाद में वो मुख काट दिया اور اس کو بکرے کی داڑھی لگا دی.
ہاتھوں میں وہی رہ جاتا ہے.
پربھو کا پائے کا مدنا ہی کیا, جس کو پربھوتا مل جاتی ہے اس کو میرا اہنکار کرتا ہے, میں پن کا اہنکار کرتا ہے. کا مدنا ہی مانے کوئی ایسا دنیا میں نہیں ہے, کوئی منشیا آتما نہیں ہے جس کو پربھوتا مل جائے اور پھر کو اس کو اہنکار نہ کرے.
تو بھگوان ملنا چاہے تو وہ سدھا اہنکار ہو سکتا ہے؟
بھگوان ہمیشہ رہے گا کیا؟ جب وشو کی بادشاہی مل جاتی ہے تو بھگوان ہمیشہ رہے گا کیا؟
تب تو پانچ بکار ہوں گا ہی.
نیچے گرے گا پھر. یہاں نیچے گرنا بھی ہوتا ہے اور یہاں اوپر چڑھنا بھی ہوتا ہے. یہاں تو انیک بچوں کا سنگ کا رنگ لگتا ہے. کس کو؟ پرجاپتا کو. تو جب انیک بچوں کا سنگ کا رنگ لگتا ہے تو اوستھا کیسی ہوگی؟ نیچے جاتی ہے. اور جب اوپر والے کا سنگ کا رنگ لگتا ہے تو اوستھا اونچی جاتی ہے. چاہے وہ رام کی آتما ہو, چاہے کرشن کی آتما ہو, چاہے ابراہیم ہو, بدھ ہو, کرائسٹ ہو, چاہے جو سمے ہو, چاہے سنگم یوگ کا سمے ہو, چاہے وہ دواپر کل یوگ کا سمے ہو, اوستھا نیچے جاتی ہے. ستو میں بھی اوستھا نیچے جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گرنے کی گتی اتنی دھیمی ہوتی ہے جو پتہ نہیں چلتا ہے. جیسے اسلام دھرم والی آتما ابراہیم جس ویکتتو میں پرویش کرتی ہے وہ ویکتی دواپر یوگ کے شروعات سے ہی نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی گتی تیور ہے کام وکار بھوگنے کی, اس لیے وہ جاگتے نیچے گرتا ہے. دواپر یوگ کے شروعات سے ہی نیچے گر گیا. رام والی آتما اتنی دھیمی گتی ہے کہ آخری جنموں میں جا کر کے نیچے گرتی ہے. رام ہوئے, کرشن ہوئے, یہ آخری جنم میں ان کو ٹائٹل ملتا ہے. کیا رام ہی راون بنتا ہے اور رام ہی کرشن بنتا ہے؟ وہ کرشن ہی کنس بنتا ہے. کیا آخری جنم میں جا کر کے ان کو یہ ٹائٹل مل جاتا ہے؟
پہلے
ارے شوٹنگ میں ہوگا تو براڈ ڈرامے میں بھی ہوگا, براڈ ڈراما میں ہوگا تو شوٹنگ میں بھی ہوگا. یہ جو بکرے کی داڑھی دکھائی گئی ہے وہ شاستروں میں سنگم یوگ کی یادگار ہے یا کلیوگ کی یادگار ہے؟ کلیوگ کی یادگار, سنگم یوگ کی یادگار. تو بولا پرجاپتا برہما دوارا منشیہ سرشتی رچتے ہیں. منشیہ اچھا کرم کرے تو دیوتا بن جاتے ہیں اور منشیہ بھرشت کرم کرے تو راکشس بن جاتے ہیں. ایسے نہیں کہ جب منشیہ سرشتی رچی اس سے پہلے منشیہ تھے ہی نہیں. منشیہ تو اس سرشتی پر تھے لیکن کوئی دیوتا بن گئے اور کوئی راکشس کے راکشس ہی رہ گئے. تو منشیہ سرشتی رچتے ہیں ارتھات منشیہ جو بندر مثل ہیں ان کو مندر لائق بناتے ہیں, پتتوں کو پاون بناتے ہیں. پتت منشیہ بندر سے بھی بدتر کہے جاتے ہیں. بندر کتنا وکاری ہوتا ہے, وکار بھوگے گا تو پیڑ کی سب سے اونچی چوٹی پہ چڑھ جائے گا. کوئی محل یا کوئی بڑا قلعہ بنا ہوا ہوگا تو سب سے اوپر جا کر کے بیٹھے گا, وہاں بیٹھ کر کے وکار بھوگے گا. اس کو کوئی شرم لحاظ نہیں ہوتی ہے, جس کے لیے کہتے ہیں شاستروں میں کام اندھ. جو کام وکار میں اندھا ہو جاتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ سماج کیا کہے گا, اس کا اثر کیا ہوگا سماج کے اوپر. تو پتت منشی بندر سے بھی بدتر کہی جاتے. صورت منشی کی ہے اور سیرت بندر کی ہے. ایسے بندروں کو باپ ہی دیوی پاون بناتے ہیں, ارتھات کانٹوں کو پھول بناتے ہیں. برہما دوارا منشی سرشتی رچتے ہیں. کس کے دوارا؟ برہما دوارا منشی سرشتی رچتے ہیں. منشی برہمن کہے جاتے ہیں, مانے برہما دوارا برہمن. پھر براہمنوں کو شکشا دے کر کیا بناتے ہیں؟ دیوتا بناتے. کس کے دوارا بناتے ہیں؟ ارے دیوتا دیوتا کے دوارا بنایا جاتا ہے. ڈاکٹر ڈاکٹر کے دوارا بنایا جاتا ہے, وکیل وکیل کے دوارا بنایا جاتا ہے. تو دیوتا کس کے دوارا بنایا جائے گا؟ دیو دیو مہادیو ہوگا تو دیوتا بنائے گا. اوم شانتی.